بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج رویوار ہے، اس ون کی 22، شابان کی 10 اور مارچ کی 13 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد انمول باتیں، اور اس کے بعد راجنیتک چرچا۔ اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے قرآن ایشور چمتکار، اور انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تازہ اور وسیت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اربل میں اسرائیلی ٹھکانے پر میزائل حملے کے بعد آئی آر جی سی نے اسرائیل کو کڑی چیتاونی جاری کی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہی دن میں 81 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ساتھ 81 لوگوں کو پھانسی کے بعد ایران نے سعودی عرب کے ساتھ سیدھی وارتہ رد کر دی ہے۔ یو پی میں بی جے پی کی جیت کے بعد بی جے پی نیتا نے مسلمانوں کو بلڈوزر کی دھمکی دی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کی اسلامی کرانتی سینا آئی آر جی سی نے عراقی کردستان کے اربل استھت اسرائیلی ٹھکانے پر جوابی میزائل حملے کے بعد اسرائیل کو کڑی چیتاونی دی ہے۔ رویوار کو ایک بیان جاری کر کے آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ یہ حملہ سوموار کو دمشق پر کیے گئے اسرائیل کے ہوائی حملے کے جواب میں کیا گیا ہے، جس میں آئی آر جی سی کے 2 ادھیکاریوں کی موت ہو گئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زائونی شاسن کے حالیہ اپرادھوں کے جواب میں آئی آر جی سی نے سٹیک مارک کشمدہ والے میزائلوں سے زائونی شاسن کے شیطانی اور جاسوسی کیندروں کو نشانہ بنایا ہے۔ غور طلب ہے کہ اربل استھت اسرائیلی جاسوسی ایجنسی موساد کے اڈے پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا ہے، جس میں کئی زائونیوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ عراق کے صابرین نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق رویوار کو اربل میں موساد کے 2 کیندروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
سعودی عرب کے گرہ منترالے نے گھوشنا کی ہے کہ ایک دن کے اندر 80 سے ادھک لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی ان پر آتنکوادی گتیویدھیوں میں لپت ہونے اور اسی پرکار اپرادھوں کو انجام دینے کا آروپ ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری سماچار ایجنسی واس نے اس دیش کے گرہ منترالے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آج شنیوار کو جن لوگوں کو پھانسی دی گئی، پھانسی دیے جانے سے پہلے انہیں یہ بتایا گیا کہ ان پر آروپ کیا ہے۔ سعودی عرب کے گرہ منترالے کے دعوے کے انوسار جن لوگوں کو پھانسی دی گئی وہ شیطان کے انویائی، گمراہ، ودیشوں سے سمبندھ رکھنے والے اور آتنکوادی کاروائیوں میں لپت تھے۔ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی ان میں 7 یمنی تھے، جبکہ 1 سیرین ناگرک تھا اور شیش سعودی ناگرک تھے۔ समाचार एजेंसी नबा के अनुसार जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें 40 लोग शिया आवासीय क्षेत्र अल कतीफ के रहने वाले थे।
ईरान ने सऊदी अरब के साथ रिश्तों की बहाली के लिए जारी पांचवें चरण की वार्ता रद्द कर दी है। रविवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित नूर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक तरफा और अस्थायी तौर पर इस वार्ता को स्थगित करने का फैसला लिया है। इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ने तुर्की में एक कूटनीतिक फोरम में कहा था कि बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच पांचवें चरण की वार्ता बुधवार को शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट में वार्ता को स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए किसी नई तारीख का ऐलान किया गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि 12 मार्च को एक बार फिर सऊदी अरब में 81 लोगों को एक साथ मौत की सजा दी गई है, जिसमें 41 शिया मुसलमान भी शामिल हैं। ईरान की ओर से वार्ता रद्द करने का एक कारण इन सामूहिक फांसियों पर आपत्ति दर्ज करवाना भी हो सकता है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन का कहना है कि देश की जनता के सहयोग से वो फिर संसद पहुंचेगा। हिजबुल्ला के उप महासचिव ने इसे देश के संसदीय चुनाव के प्रचार का आरंभ करते हुए कहा है कि जनता के मत एक बार फिर हिजबुल्ला को देश की संसद तक ले जाएंगे। शेख नए कासिम ने चुनावी प्रचार का आरंभ करते हुए कहा कि देश के संसदीय चुनाव के बारे में अमरीकी योजना हिजबुल्ला को राजनीतिक पटल से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि लेबनान में कुछ बिके हुए लोग हैं जो अमरीका के लिए काम कर रहे हैं, वे अमरीका के समर्थन में बातें करते हैं। नईम कासिम ने देश की जनता में हिजबुल्ला की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि दूसरे अन्य संगठनों की तुलना में हिजबुल्ला सर्वेक्षणों में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला देश की जनता के लिए समर्पित है। शेख नईम कासिम के अनुसार हिजबुल्ला कभी भी देश के लिए मुश्किल नहीं रहा, बल्कि हमारी मुख्य मुश्किल अमरीका है जो यहाँ पर मनमानी करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि तय ये था कि लेबनान में 27 मार्च 2022 को संसदीय चुनाव आयोजित होंगे, किंतु इस देश के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने आदेश दिया है कि संसदीय चुनाव 15 मई 2022 को कराए जाएंगे।
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक आयोजित हुई है। इससे पहले कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी में सांगठनिक बदलाव की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि रविवार को आयोजित हुई इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि गांधी परिवार के सदस्य संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे देंगे। रविवार शाम शुरू हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी शामिल होने की खबर है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव के बारे में किए गए फैसलों के बारे में अंतिम समाचार मिलने तक ब्यौरा प्राप्त नहीं हो सका था।
शिवसेना ने दावा किया है कि राज्य चुनाव में भाजपा की हालिया जीत में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव प्रमुख कारक साबित हुआ है। शिवसेना का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले केंद्रीय जांच एजेंसियों से दबाव बनाकर मायावती को चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बसपा प्रमुख मायावती पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि यूपी चुनाव में बसपा की उपस्थिति महज औपचारिकता थी, बसपा प्रमुख मायावती को चुनावों से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। शिवसेना के अनुसार मायावती की बसपा यूपी चुनाव से भाग गई और उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ दिया गया। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि मायावती कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुड़ा बनकर घूमती थी, लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसी से दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक बार फिर हिंदुत्ववादी नेताओं ने मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया है। रामपुर की बिलासपुर सीट से विधायक चुने गए राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने नफरती और बहुत ही विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से चलेगा। उनके इस बयान के बाद मुसलमानों और उदारवादी हिंदुओं में रोष है। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी सरदार बलदेव सिंह औलख मतगणना पूरी होने पर بمشکل صرف 307 ووٹوں سے جیت پائے اور بے حد نزدیک سے ہار دیکھ کر وہ آپا کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک مت گننا استھل پر ہی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ووٹ نہیں دینے کے لیے مسلمانوں کو دھمکی دے ڈالی۔
جوزف بورل کا کہنا ہے کہ برسلز نے یوکرین کو ایسا وچن دے کر غلطی کی جسے وہ ویوہارک نہیں بنا سکتا۔ یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پربھاری نے کہا ہے کہ پشچم کی اور سے یوکرین کو نیٹو کے سدستا کا وعدہ دینا غلط تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ انمول باتیں۔ دوستو، کارکرم انمول باتیں کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں۔ آج ہم سفرتاؤں کا سار، پرتیرودھ اور شیطانی مکاریوں اور دھوکے کے بارے میں سپریم لیڈر کیا کہتے ہیں، اس سمجھ میں چرچا کریں گے۔ محمد مہدی کا سلام، سویکار کیجیے۔ ایران کے اسلامی کرانت کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پرتیرودھ کو فرشتوں کے اترنے اور ہمیشہ باقی رہنے والے کلیان تک پہنچنے کا کارن بتاتے ہیں۔ سرو سمرتھ ایشور نے اٹل وعدہ کیا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور دکھی بھی نہ ہو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ صحیح راستے میں پرتیرودھ کا پریڑام یہ ہے کہ سرو سمرتھ و مہان ایشور ایک انسان اور سماج کو دکھ اور بھے ختم کر دیتا ہے اور اس کے بھاگ میں سفلتا لکھ دیتا ہے۔ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ ایشور کا راستہ ہے۔ ایشور کا راستہ کیول عبادت کرنا اور ایکانت میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ ایشور کا راستہ یعنی مانویہ سماج کا پریپورتا تک پہنچنا ہے۔ اسلامی کرانت کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ ہمارے راشٹر نے یہ راستہ چنا ہے، یعنی نیائے کا راستہ، انصاف کا راستہ، ایشوریہ عبادت کا راستہ، انسانوں کی برابری کا راستہ، ایک دوسرے سے انسانوں کی برابری کا راستہ، بھلائی و نیتکتا کا راستہ، انسانوں کی وشیشتا اور بھلائی کا راستہ۔ اس راستے کو ہمارے راشٹر نے چنا ہے اور اس راستے پر آگرہ بھی کر رہا ہے۔ اس راستے میں پڑنے والی کٹھنائیوں سے مقابلہ کیا اور اس سے ڈرے نہیں۔ اس پر ڈٹے رہنے کا پھل اور سواد انشاءاللہ ایشور اسے چکھائے گا۔ دوستو، اسلامی کرانت کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شیطانی چالوں جیسے رکاوٹوں کو ایشوری پرمپراؤں کا حصہ قرار دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ان رکاوٹوں پر وجے کے ایشوری وعدوں کو بھی ایشوری پرمپرائیں قرار دیتے ہیں۔ یہ سب رکاوٹیں ایشوری پرمپراؤں کا حصہ ہیں۔ یہ سب رکاوٹیں کوئی اچانک ہی نہیں آ گئیں، یہ سب ایشوری پرمپرائیں ہیں، یعنی پریاس اور حرکت کو رکاوٹ کا سامنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو جہاد کا کوئی ارتھ ہی سمجھ میں نہ آتا۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ پوتر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات اور انسان کے شیطانوں کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے بیکار کی باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لے تو یہ ایسا نہ کر سکتے، اس لیے اب آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔
सारे नबियों के निमंत्रण के रास्ते में दुश्मन यानी इंसान और जिन्नात में से रुकावटें मौजूद थीं। एक अन्य आयत में कहा गया है, और इसी तरह हमने हर गांव में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया है कि वो मक्कारी करें, और उनकी मक्कारी का असर खुद उनके अलावा किसी और को नहीं होता, लेकिन उन्हें इसका भी एहसास नहीं है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि समाज के भीतर उस वर्ग का अस्तित्व जो उसके लिए भ्रष्टाचार का कारण बनता है, मक्कारी का कारण रहा है। ये सब चीजें परंपराओं का हिस्सा हैं। यानी ईश्वरीय दूतों ने भी ये कभी नहीं कहा कि हम जब रास्ता साफ होगा तभी मैदान में उतरेंगे, नहीं, ये नहीं कहा। इसी कठिन और परेशानियों से भरे रास्ते पर उतर जाते थे, जैसे इस्लामी गणतंत्र ईरान और इस्लामी क्रांति। लेकिन इसके मुकाबले में ईश्वरीय परंपरा भी यह है कि अगर नबियों की कार्यवाही अल्लाह की कार्यवाही, जिसका चरितार्थ इस्लामी क्रांति है, अपना काम जारी रखें और आगे बढ़ती रहे, तो वो इन सारे रुकावटों पर विजय हासिल करेगी। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति, खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं सऊदी अरब में बड़ी संख्या में लोगों को सजाए मौत, यूक्रेन जंग का जिम्मेदार कौन, और कश्मीर में हालात बिगड़े। तो सबसे पहले सऊदी अरब में सजाए मौत का विषय। सऊदी अरब ने 81 लोगों को सजाए मौत दे दी है। सऊदी सरकार ने इन लोगों पर निराधार आरोप लगाते हुए सजाए मौत दी है। बताया जाता है कि इन 81 लोगों में से 41 का संबंध शिया अल्पसंख्यकों से है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी رويش زيدي.
تضاف إلى سلسلة الإعدامات التي نفذتها المملكة السعودية سابقا.
جب جنوری 2016 میں سعودی عرب کے ورشٹھ شیعہ دھرم گرو آیت اللہ شیخ باقر نمر کو ان 47 بندیوں کے ساتھ موت کی سزا دی گئی تو سعودی عرب کے پوروی پرانتوں میں پردرشن پھوٹ پڑے تھے۔ وہیں ایک بار پھر شنیوار 12 مارچ کو تاناشاہ سعودی شاسن نے ایک ساتھ 81 لوگوں کو پھانسی دے دی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب اور اس دیش کے شیعہ سمودائے کے بیچ سمبندھ ادھک خراب ہو رہے ہیں۔ ایک انومان کے انوسار سعودی عرب کے پوروی پرانتوں کے 10-15% ناگرک شیعہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے سن 2017 کے پردرشنوں میں بھاری سنکھیا میں بھاگ لیا تھا۔ الیکھنیے ہے کہ سعودی عرب کی تاناشاہی سرکار نے شنیوار 12 مارچ کو جن 81 لوگوں کو پھانسی دی ہے ان میں سے 41 شیعہ یوا تھے، جن میں سے زیادہ تر یواؤں کا سمبند اس دیش کے پوروی پرانت الحسا سے تھا، جنہیں سعودی عرب کی تاناشاہی سرکار نے وبھن بہانوں سے گرفتار کر کے جیل میں قید کر رکھا تھا۔ سعودی عرب میں لگاتار شیعہ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے کئی کارن بتائے جاتے ہیں، جن میں سے سعودی عرب میں ویچارک پرنرمان کوئی نئی چیز نہیں ہے اور سن 1932 میں موجودہ ڈھانچے کی رچنا سے اب تک اس کے پرنرمان کی کئی بار بات ہو چکی ہے۔ پہلے دھرم کی بھومکا کو دھیان میں رکھا جاتا تھا، لیکن اس بار راشٹرواد کو آدھار بنایا گیا ہے۔ اس پوری پرکریا میں دھیان یوگ بات سعودی عرب میں دھرم کی بھومکا کی دوبارہ ویاکھیا کرنا ہے۔ اس نئی ویاکھیا میں سمپردائکتا سے دوری پر بل دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا گٹھن ہی آل سعود قبیلے اور وہابی دھرم گرووں کی گٹھ جوڑ کے پرینام میں ہوا تھا۔ یہ سرکاری دھرم گرو شیعہ مسلمانوں کو کئی اپمان جنک ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو اپنے دھارمک سنسکاروں کی کھلی چھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر پر آزان دی جا سکتی ہے۔ وہابی دھرم گرو ہمیشہ سے ہی شیعوں پر بھاتی بھاتی کے آروپ لگا کر ان کے خلاف فتوے دیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کی دھرم گروؤں کی پریشد کے ایک سدس نے کہا تھا کہ شیعہ مسلمان ہمارے بھائی نہیں بلکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ سن 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے نریش بنے اور سن 2017 میں ان کے بیٹے محمد بن سلمان کراؤن پرنس بنے، تب سے اس دیش کے شیعہ مسلمانوں کے خلاف ادھک بل پریوگ ہو رہا ہے اور ان پر اتیاچاروں کی باڑ سی آ گئی ہے۔ آئے دن اس دیش کے شیعہ یوواؤں کو گرفتار کر کے انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ مانو ادھیکار سنگٹنوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ سعودی شاسن نے جن لوگوں کو پھانسی دی ہے ان میں سے کئی آروپیوں کو نشپکش طور پر قانوناً اپنی دلیل دینے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ کچھ ٹیکہ کاروں کا ماننا ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو کیول اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریجنوں کے پرتی اپنے پریم اور اسنے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جنت البقیع استھت قبرستان میں پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے نواسے اور پوتروں کی قبروں کے پنر نرماڑ کی مانگ کرتے رہے ہیں۔ کل ملا کر اس سمے سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی استھتی بہت ہی دینیے ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دیش کے شیعہ مسلمانوں پر ہوتے اتیاچار کے سامنے دنیا کے تتھا کتھت مانو ادھیکار کے سمرتھن کا دعویٰ کرنے والے دیش اور سنگھٹن نہ کیول تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ سعودی عرب کے آل سعود شاسن کے ساتھ ہر طرح کا سہیوگ کر رہے ہیں۔
اور اب یوکرین سنکٹ۔ یورپیہ سنگھ کے ودیش نیتی پربھاری نے یوکرین سنکٹ کا ذمہ دار پشچم کو قرار دیا ہے۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی۔
جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ برسلز نے یوکرین کو ایک ایسا وچن دے کر غلطی کی جسے وہ ویوہارک نہیں بنا سکتا۔ یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پربھاری نے کہا ہے کہ پشچم کی اور سے یوکرین نے نیٹو کی سدسیتا کا وعدہ جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ جوزف بوریل نے کہا کہ ہم نے وہ وعدہ کیا جسے ہم پورا نہیں کر پائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، ہم نے جو وچن دیا اس کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ بوریل نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ روس کے ساتھ سمبندھوں کے بارے میں پشچم نے غلطی کی اور روس کو پشچم سے نکٹ کرنے کا افسر گنوا دیا۔ یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پربھاری کا یہ بیان یوکرین یدھ کے لیے پشچم کو ذمہ دار بتاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماسکو کی لگاتار چیتاونیوں کے باوجود پوروی یورپ تک نیٹو کے وستار کے ادیش سے یوکرین کو اکسا کر امریکہ اور پشچم نے برا کیا۔ سن 2008 میں بخاریسٹ سمیلن میں نیٹو کے راشٹرادھیکشوں نے پوروی یورپ کی اور نیٹو کے وستار کے پریپریکش میں یوکرین تتھا جارجیا کو اس سنگٹھن کی سدستا کی بات کہی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ مدعا نیٹو اور روس کے بیچ گمبھیر مدبھید کا کارن بن گیا تھا۔ امریکہ اور نیٹو نے اس سندرب میں یوکرین کو روس کے ورودھ بھڑکانے کا کام تیز کر دیا۔ یوکرین میں پشچم کا سمرتھن پراپت ستاداری یہ ماننے لگے تھے کہ ایسے میں ان کو روس کی دھمکیوں کے مقابلے میں سنشچت سرکشا مل جائے گی۔ اپنی سرکشا سے نشچنت ہونے کے بعد یوکرین کے نیتاؤں نے اس بات کو پوری طرح سے اندیکھا کر دیا کہ اس کام سے روس کی ریڈ لائن کے لیے گمبھیر خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ روس اور جارجیا کے یدھ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نیٹو کی سدستا پر بل دینے کے کارن ماسکو کی اور سے کڑی پرتکریا دکھائی جاتی ہے۔ यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से घिरा हुआ है, किंतु अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में किसी भी रूप में उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि युद्ध में यूक्रेन को ढकेलने वाले वे ही हैं।
और अब चलते हैं भारत।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं का क्रम तेज हो गया है, जबकि स्थानीय सरकार का कहना है कि हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण हुआ है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
कश्मीर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं का क्रम तेज हुआ है। भाजपा के एक कार्यकर्ता जो सरपंच भी था, अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे गोली मारकर हताहत कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारी शब्बीर अहमद नामी सरपंच के घर में घुस आए और उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप वो गंभीर रूप से घायल हुआ। अगरचे उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु वो जख्मों की ताब न लाकर हताहत हुआ। इससे पहले भी दो अलग अलग आक्रमणों में दो पंचों को हताहत कर दिया गया था, जबकि एक आक्रमण में एक पंच मौजदाती तौर पर बच निकला। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने श्रीनगर में इन घटनाओं के हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के बीच विभिन्न मुठभेड़ों में चार अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जबकि विभिन्न को गिरफ्तार किया गया जो इन घटनाओं में आरोपी थे। उन्होंने कहा कि हिंसा को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इन घटनाओं में मुलविस होगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें मुठभेड़ों में हताहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को ये आदेश दिए गए हैं कि मुठभेड़ों में और तेजी लाए और जहां भी सुरक्षा बलों को ये सूचना प्राप्त हो कि यहां पर अलगाववादी छापामार छुपे बैठे हैं, वहां पर फौरी तौर पर क्रैकडाउन किया जाएगा।
कल देर शाम में पुलिस पुलवामा को, गंदरबल को, हनवारा को तीनों खबर मिला था, तो तीनों जगह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट हम लोग चार जगह लॉन्च किए थे, जिसमें तीन जगह कमें मिली है। तो पुलवामा इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए, दोनों जैश मोहम्मद का है, एक पाकिस्तान का खालिद भाई है जिसको जट भी बोलते हैं, 2018 से शोपियन पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा याकिब मुश्ताक है, जाहिद वानी टॉप कमांडर मारा गया था, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था।
सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज कल, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरी चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह मरियम की आयत नंबर 81 और 82 की तिलावत सुने।
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ان لوگوں نے ایک ایشور کے استھان پر دوسرے دیوتاؤں کا چین کیا ताकि वो देवता उनके लिए सम्मान का कारण बने, किंतु कदापि नहीं। शीघ्र ही वे उनकी उपासना का इनकार करेंगे और उनके शत्रु बन जाएंगे।
पिछले कार्यक्रम में हम अवगत हुए कि कुछ लोग संसार की मोहमाया में ग्रस्त हो जाते हैं और धन व संतान को सम्मान व शक्ति का कारण समझते हैं। इस आयत में कहा गया है कि ईश्वर का इनकार करने वाले सम्मान की खोज ईश्वर को छोड़कर करते हैं, जबकि उनके काल्पनिक देवता भी प्रलय के दिन उनसे विरक्तता प्रकट करेंगे और अपने उपासकों की सिफारिश उन्हें सम्मान देने या सहायता करने के स्थान पर उनके विरुद्ध ही खड़े हो जाएंगे।
कुरान मजीद के कुछ दूसरी आयतों में भी इसी विषय की ओर संकेत किया गया है। यहाँ तक कि पत्थर और लकड़ी की प्रतिमाएं भी प्रलय के दिन ईश्वर के आदेश से बोलने लगेंगी और अपने उपासकों और अनेकेश्वरवादियों से विरक्तता की घोषणा करेंगी।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कथन है कि इस आयत में देवताओं से आशय वो बड़े लोग और सरदार हैं जिनका अनुसरण करके लोग सम्मान पाना चाहते हैं, क्योंकि इस आयत में उपासना से आशय सजदा करना या झुकना नहीं बल्कि अनुसरण व आज्ञा पालन है। और जो भी किसी रचना के आज्ञा पालन द्वारा रचयिता की अवज्ञा करता है तो इस प्रकार का आज्ञा पालन वास्तव में उसकी उपासना करने की भांति होता है।
इस आयत से हमने सीखा कि सम्मान व प्रेम मनुष्य की प्रवृत्ति का भाग है, किंतु बहुत से लोग सम्मान प्राप्त करने के स्थान के बारे में गलती कर बैठते हैं और सम्मान के मूल स्रोत अर्थात ईश्वर की ओर नहीं जाते।
मनुष्य ईश्वर को छोड़कर जिन लोगों से आशा लगाते हैं वही लोग अथवा वस्तुएं कयामत के दिन उनके विरुद्ध खड़ी होंगी और ईश्वर को छोड़कर अन्य पर भरोसे के कारण वो भी अपने उपासकों से क्रुद्ध होंगी।
आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 83 और 84 की तिलावत सुने।
अलम तर अन्ना अरसलना الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों के पास भेजा ताकि वो उन्हें भड़काएं, तो उनके बारे में उतावलापन मत करो, हमने उनका हिसाब कर रखा है।
जैसा कि हमने बताया कि ईश्वर को न मानने वालों को अन्य वस्तुओं की पूजा और बड़े बड़े लोगों के आज्ञा पालन से कुछ हाथ आने वाला नहीं है और कयामत के दिन स्वयं वे और उनके लिए जो पूज्य थे सब ईश्वर की शरण में ही जाएंगे, तो फिर हमें जल्दी क्या है कि ईश्वर शीघ्र ही उनका काम खत्म कर दे। उनके सारे कर्म लिखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी गिनी जा रही हैं।
सांसें या आयु का हिसाब किताब रखने का अर्थ वास्तव में उन कर्मों का हिसाब किताब रखना है जो कर्म पत्र में लिखे जाते हैं, और जिस प्रकार से गर्भाशय में रहने से बच्चे के शरीर की रचना पूरी होती है उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य के रहने का कारण भी ये है कि उसकी आत्मा की रचना पूरी हो और ईश्वर ने जो कुछ उसके लिए लिखा है उस चरण तक वो पहुंच जाए।
इस आधार पर ये उचित नहीं है कि मनुष्य किसी अन्य के लिए ईश्वर से मृत्यु की मांग करे, भले ही वो अन्य व्यक्ति पापी व नास्तिक हो या धर्म पर आस्था रखने वाला हो। चूंकि बुरे कर्म करने वाला और नास्तिक प्रायः इस संसार में पाप ही करता है, इसलिए जितने भी दिन वो इस संसार में रहता है वो वास्तव में पापों की गिनती की अवधि होती है ताकि उसको अपने किए का दंड मिल सके। दूसरी ओर योग्य व सुकर्मी व्यक्ति की इस संसार में आयु उसकी अच्छाइयों को गिने जाने की अवधि है ताकि उसे उसके अच्छे कर्मों का फल दिया जा सके।
इस आयत से हम ये सीखते हैं कि जो लोग ईश्वर का इनकार करते हैं उनका एक दंड ये है कि उन पर दुष्ट व शैतान का नियंत्रण हो जाता है।
शैतान मनुष्य को भड़काता है किंतु विवश नहीं करता, यद्यपि उसका भड़काना अत्यधिक शक्तिशाली होता है।
ईश्वर की शैली व परंपरा यह है कि वो लोगों को मोहलत दे और वो बुरे लोगों को उनकी बुराई के कारण मारने में जल्दी नहीं करता।
آئیے اب سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں۔
یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا۔
جس دن بھلے کرم والے لوگوں کو ہم ایشور کے پاس ایکترت کریں گے اور اپرادھیوں کو اس دشا میں کہ وہ پیاسے ہوں گے نرک کی اور کھدیڑ دیں گے۔
اس آیت میں لوگوں کو دو گٹوں بھلے اور اپرادھیوں میں بانٹا گیا ہے اور دونوں گٹوں کے انجام کو سنکشیپ میں اس پرکار سے بتایا گیا ہے۔
بھلے لوگ تو ایشور کے اتیتھی ہیں، اسی لیے انہیں سورگ میں بھیج دیا جائے گا، کنتو اپرادھیوں کی استھتی دوسری ہے۔ جس پرکار سے پیاسے اونٹ جلاشے کی اور لے جائے جاتے ہیں، اپرادھیوں کو اسی پرکار نرک کی اور ہانکا جائے گا، کنتو وہاں پانی نہیں ہوگا، کیول آگ ہی آگ ہوگی۔
قرآن میں ایشور کے پاس کا جو شبد پریوگ کیا گیا ہے وہ واستو میں نرک کی اور ہانکے جانے کے مقابلے میں ہے۔ اس پرکار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس پرکار کا ادیش بھلے لوگوں کو سورگ میں بھیجنا ہے۔ بھلے لوگوں کو سورگ میں بھیجنے کے لیے ایشور کے پاس کے شبد کا اس لیے بھی پریوگ کیا گیا ہے کیونکہ سورگ بھی ایشور سے نکٹتا کے ارتھ میں ہے اور سورگ میں جانے کا ارتھ ایشور کے نکٹ ہونا ہے۔
اس آیت میں اپرادھیوں کو نرک میں لے جانے کی دشا کا ورنن کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ان کے نرک واسی ہونے کا کارن ان کا پاپ اور اپرادھ ہے، جیسا کہ آیت میں ایشور کے پاس جانے کو بھلے لوگوں سے وشیش کیا گیا ہے تاکہ یہ سپشٹ ہو سکے کہ ان کے سورگ میں جانے کا کارن سنسار میں ایشور سے بھے اور اچھے کرم ہیں۔
اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ قیامت یا پرلے بھلے اور برے لوگوں کے سامنے آنے کا دن ہے۔ بھلے لوگ ایشور کے اتیتھی ہیں، کنتو اپرادھی و پاپی تچھتا و اپمان کے ساتھ نرک میں ڈال دیے جائیں گے۔
سورگ میں جانے سے ادھک مہتوپورن ایشوریہ کرپا کا پاتر بننا ہے جو واستو میں سورگ میں رہنے والوں سے وشیش ہے۔
سورگ کی چابی ایشور سے ڈرنا ہے اور یہ بھے و ڈر جیون کے سبھی کشنوں میں محسوس کیا جانا چاہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم مہر دادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तो आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के बहाने अमेरिका ने पश्चिम एशिया में विभिन्न सैनिक छावनियां बना रखी हैं। किंतु हालिया 50 वर्षों के अनुभव और घटनाएं इस बात की सूचक हैं कि अमेरिका की सैनिक छावनियों में जितनी वृद्धि होगी उतना ही क्षेत्र की सुरक्षा में कमी और आतंकवादी गतिविधि में वृद्धि होगी। दोस्तों आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रमों में हमने बताया था कि 11 सितंबर की घटना के बाद अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी पकड़ व प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए सैनिक छावनियों में वृद्धि कर दी है।
अमेरिका दुनिया के हर उस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है जहां से वो अपने हितों की पूर्ति कर सकता है। 11 सितंबर की घटना के बाद उसने शांति व सुरक्षा स्थापित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और 20 वर्षों तक अमेरिका और उसकी अगुवाई व दिशा निर्देशन में नेटो के सैनिक भी अफगानिस्तान में मौजूद रहे और अमेरिका ने अफगानिस्तान में बगराम हवाई छावनी जैसी कई सैनिक छावनियां भी बना रखी थीं। परंतु आज तक न तो अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो पाई और न ही वहां से आतंकवाद का सफाया हो पाया।
अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद करके एक खंडर में परिवर्तित कर दिया। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से जाते जाते वहां के निर्दोष लोगों के खून से होली खेल कर गए। यही नहीं, अमेरिका अफगान जनता की सहायता करने के बजाय उसकी वो संपत्ति भी हड़प कर बैठा जो अमेरिकी बैंकों में थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अफगानिस्तान की जो संपत्ति अमेरिकी बैंकों में है उसका आधा भाग 11 सितंबर की घटना में प्रभावित लोगों को दिया जाएगा और शेष कल्याणकारी संस्थाओं को। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग 11 सितंबर की घटना में प्रभावित हुए उसमें अफगानिस्तान और इस देश की जनता की क्या भूमिका थी। 11 सितंबर की घटना के संबंध में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से अधिकांश का संबंध सऊदी अरब से था, न कि अफगानिस्तान से, और अमेरिका ने सऊदी अरब का एक पैसा भी नहीं हड़पा। ये मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले अमेरिका का असली रूप है।
रोचक बिंदु यह है कि 11 सितंबर की घटना को 21 वर्ष से अधिक का समय हो रहा है, परंतु आज तक इसके दोषियों का कुछ पता नहीं है। ये घटना किसने अंजाम दी, इसके बारे में अभी तक जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई। 11 सितंबर को अमेरिका में जिन इमारतों को निशाना बनाया गया उनमें बड़ी संख्या में ज़ायोनी व यहूदी भी काम करते थे, परंतु एक ज़ायोनी घायल तक नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर दाल काली न होती तो बहुत पहले इसके संबंध में जांच पड़ताल हो चुकी होती और दोषियों को सजा दी जाती, पर इस बारे में न तो अमरीकी अधिकारी बोलते हैं और न ही इस देश के संचार माध्यम।
दोस्तों अमेरिका ने सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने के बहाने वर्ष 2003 में इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सद्दाम की तानाशाही सरकार का अंत करके उसका अधिग्रहण कर लिया और वहां की संपत्ति का खूब दोहन व शोषण किया और कर रहा है और इराक पर हमला किए लगभग 20 वर्षों का समय हो रहा है, परंतु आज तक सामूहिक विनाश के हथियारों का कोई अता पता नहीं है। यही नहीं, अब अमेरिका इन हथियारों की बात भी नहीं करता। अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि जिस बात व दावे को आधार बनाकर उसने इराक पर हमला किया था और उसके इस हमले में दसियों हजार इराकी मारे गए थे, उन सब का जिम्मेदार कौन है? अबू गरीब की भयावह जेल में अमेरिकी सैनिकों ने जो जघन्य अपराध अंजाम दिए हैं उन पर कब मुकदमा चलाया जाएगा? दोषियों को सजा न देना ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जूनियर बुश ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला करके इन देशों को तबाह कर दिया और इन देशों के दसियों हजार निर्दोष लोग मारे गए। इन सब के खून का जिम्मेदार कौन है? क्या इस संबंध में अमेरिका में कोई कानून नहीं है?
दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सैनिक छावनियां बनाकर न केवल इन देशों की सुरक्षा में वृद्धि की, बल्कि इन देशों में जो शांति थी उसे खत्म करके अशांति व सुरक्षा में वृद्धि कर दी। सीरिया को भी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अमरीका ने आतंकवाद से मुकाबले के बहाने सीरिया में अपनी सैनिक छावनियां बना रखी हैं। सवाल यह है कि क्या सीरिया की सरकार ने आतंकवाद से मुकाबला के बहाने अमेरिका को वहां बुलाया है? आतंकवाद से मुकाबले के बहाने हजारों सीरियाई अमेरिका के परोक्ष व अपरोक्ष हमलों में मारे जा चुके हैं। वर्ष 2014 से अमेरिका आतंकवाद से मुकाबले के सीरिया में है और आज तक सीरिया से आतंकवादी खत्म नहीं हुए। अगर ईरान, हिजबुल्ला और रूस की सहायता न होती तो आज सीरिया में आतंकवादी गुट दाइश की सरकार होती।
सीरिया में आतंकवादी गुटों के पालन पोषण में अमेरिका और उसके घटकों ने किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। अमेरिका और उसके घटकों ने आतंकवादी गुटों को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस किया, उन्हें सैनिक ट्रेनिंग दी और उनका वित्तीय पोषण किया और कर रहे हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि आतंकवादी गुटों की उपज अमेरिका और उसके घटकों के क्रियाकलापों का परिणाम है। अगर अमेरिका और पिछलग्गुओं का समर्थन व आशीर्वाद न होता तो आतंकवादी गुट अस्तित्व में ही न आते।
सीरिया में आतंकवादी गुटों ने जो तांडव मचा रखा था उसका लक्ष्य सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की कानूनी सरकार का तख्ता पलटना और इसराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना था। आज सीरिया में आतंकवादी गुटों को पूरी तरह से पराजित किया जा चुका है, परंतु इसराइल बचे खुचे आतंकवादियों का समर्थन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सीरिया पर हमले करता रहता है। रोचक बात है कि राष्ट्रसंघ या सुरक्षा परिषद इसराइल के हमलों की एक बार भी भर्त्सना तक नहीं करता।
दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इसराइल केवल सीरिया पर हमले क्यों करता है जबकि जॉर्डन की सीमा भी उससे मिलती है। उसका एक जवाब यह है कि सीरिया में बहुत से फिलिस्तीनी संघर्ष करता रहते हैं जो इसराइल की विस्तारवादी नीतियों के लिए खतरा और उसके विरोधी हैं। इसराइल सीरिया में तथाकथित इस्लामी सरकार चाहता है। वो ऐसी सरकार चाहता है जो इसराइली वर्चस्व की विरोधी न हो। सीरिया की गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल ने वर्ष 1967 से कब्जा कर रखा है और सीरिया की सरकार ने बारंबार कहा है कि गोलान उसका हिस्सा है। इसराइल सीरिया में ऐसी सरकार चाहता है जो ये स्वीकार कर ले कि गोलान की पहाड़ियां इसराइल की हैं। अगर वहां की सरकार ये स्वीकार कर ले कि गोलान की पहाड़ियां इसराइल की हैं तो राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद भी उसे मान्यता दे देगी।
सीरिया की गोलान की पहाड़ियां ज़ायनी शासन के गले की हड्डी बन गई है। आज तक सीरिया में आने वाली किसी भी सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि गोलान की पहाड़ियां इसराइल की हैं और न ही राष्ट्रसंघ ने उसे मान्यता दी। इसराइल जॉर्डन पर क्यों हमला नहीं करता है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसराइल ने जॉर्डन के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है उसके संबंध में जॉर्डन कभी कुछ बोलता नहीं। अमली तौर पर उसने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके अधिकृत क्षेत्र इसराइल के हिस्से हैं। अगर आज सीरिया ये स्वीकार कर ले कि गोलान की पहाड़ियां इसराइल की हैं और अपने यहाँ से फिलिस्तीनी संघर्षकर्ता गुटों को निकाल दे तो इसराइल सीरिया पर हमले नहीं करेगा।
अमेरिका इराक के बगदाद, अलम्बार, दहूक, अरबील, करकूक, नैनवा और सलाहुद्दीन में 14 सैनिक छावनियां बनाई हैं। इसी प्रकार इराक के कुछ दूसरे क्षेत्रों में गुप्त प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए हैं। इराक में अमेरिका की जो सैनिक छावनियां हैं उन्हें अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। अरबिल प्रांत में अमेरिका की एक छावनी हरीर है जो ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचने का केंद्र रही है।
इराक के अलम्बर प्रांत में एनुल असद अमेरिका की एक काफी मशहूर सैनिक छावनी है। वैसे तो अमेरिका की सारी छावनियां आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं, परंतु एनुल असद उनमें उल्लेखनीय है। अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों ने जब जनरल कासिम सुलेमानी को हमला करके शहीद कर दिया था तो उसके बाद ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर एनुल असद की छावनी पर कई मिसाइल मारे थे।
अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों ने 3 जनवरी वर्ष 2020 को बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सिपाही पासदारन के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला करके शहीद कर दिया था। उनके साथ इराक के स्वयंसेवी बल हश्दु शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और कुछ दूसरे सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। ये क्षेत्र में अमेरिका की सैनिक छावनियों और अमेरिकी सैनिकों की गैर कानूनी उपस्थिति का एक परिणाम था। रोचक बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से जनरल कासिम सुलेमानी पर आतंकवादी हमला करके उन्हें शहीद किया गया। जनरल कासिम सुलेमानी आतंकवाद और आतंकवादी गुटों से मुकाबले के महान नायक थे और ये बात अमेरिकियों को बहुत अच्छी तरह ज्ञात थी। ये जनरल कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, सूझबूझ और प्रयास से इराक और सीरिया को आतंकवाद और आतंकवादी गुटों से मुक्ति दिलाई थी। ये शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ही थे जिनके विवेक और दूरगामी सोच से अमेरिकी षड्यंत्रों पर पानी फिर गया। जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने इराक में अमेरिका की सैनिक छावनी पर ईरान के जवाबी हमले के संबंध में कहा था कि क्षेत्र की जनता और उसके मतों व इच्छाओं से बनने वाली सरकारें कभी भी अमेरिकी उपस्थिति को जारी रहने को स्वीकार नहीं करेंगी और इस क्षेत्र में और दुनिया के जिस क्षेत्र में भी अमेरिका की सैनिक उपस्थिति रही है वहाँ जंग, फूट और बर्बादी के सिवाय कुछ और नहीं रहा है। अमेरिकी इस्लामिक गणतंत्र ईरान को आघात पहुंचाने की जुगत व चेष्टा में हैं और वे ईरान से वार्ता के इच्छुक हैं और वार्ता उनके हस्तक्षेप की भूमिका है। इस आधार पर क्षेत्र से अमेरिकी उपस्थिति खत्म और उसका अंत होना चाहिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।